जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शना, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिता, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद चार अध्याय क्रमांक 31 प्रचेताओं को नारद का उपदेश श्लोक क्रमांक 15 यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारहा पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाहः यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावीव गुणप्रवाह यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह यथा जिस्तरह एव निश्चय ही सूर्यात् सूर्य से प्रभवंती उत्पन्न होता है वारह जल पुनः फिर से च तथा तस्मिन् उसमें प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता है काले कालक्रम से भूतानि समस्त जीव भूमौ पृथ्वी पर स्थिर अचर जंगमानि तथा चर तथा उसी प्रकार हरौ भगवान में एवा निश्चय ही गुणप्रवाह भौतिक प्रकृति का उद्भव अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम में पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। तात्पर्य अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है यस्य प्रभा प्रभवन् प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती है और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में हुई है मत्स्तानि सर्वभूतानि। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत है। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवन शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियों तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है यस्यैकनिःश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णोर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमाओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आपका श्रीमद्भागवतम कक्षा में। खास करके आचार्य रत्न प्रभु सामने बैठे हैं, तो ये श्रीमद्भागवतम का नारद मुनि का उपदेश के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। तो पिछला क्लास में मैंने बताया था कि साधु संघ का महत्व के बारे में बताया था, तो यहां पर जो बताया गया है कि साधु महान साधु नारद मुनि का संघ प्राप्त हो रहा है प्रचेताओं को, तो खास करके प्रचेताओं का सद्भाग्य है। तो नारद मुनि जैसा एक शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनने का मौका उनको प्राप्त हुआ है। तो नारद मुनि जैसे एक शुद्ध आत्मा हमेशा भगवान का विचार में मग्न रहते हैं, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पिछला श्लोक में तात्पर्य में पिछले कुछ श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं नारद मुनि को भी भगवान कहा जा सकता है। तो भगवान जो है तो उनका व्याख्या पराशर मुनि बताते हैं, जिनके पास छह ऐश्वर्य एक साथ पूर्ण मात्र में मौजूद होता है वो भगवान कहला सकते। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, भगवान ही भगवान है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद मुनि को भी भगवान कहा जा सकता है, क्योंकि नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त हालांकि छह ऐश्वर्य तो नहीं होगा, फिर भी उनका एक महत्वपूर्ण एक लक्षण है कि वे भगवान जो
छह ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा में रखते हैं, उन भगवान को ही अपने हृदय में रखते हैं, इसलिए उनको भी भगवान शब्द से पुकारा जा सकता है। तो ऐसे शुद्ध महात्माओं के द्वारा जब कोई हरि कथा सुनता है तो उनका कर्म बंध का जो पाश है, जो रस्सी है, वो कट जाता है और सारे बुरे इफेक्ट्स है वो निकल जाता है और वो हाईएस्ट जो लोक है, वैकुंठ लोक, भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान का जो शुद्ध भक्तों से सुनने से व्यक्ति ब्रह्म भगवान का रियलाइजेशन करता है और स्पिरिचुअल परफेक्शन करता है। तो ये संभव है केवल एक शुद्ध भक्तों का या एक सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर, ये गुरु, आत्म साक्षात्कारी गुरु का आश्रय लेने से ऐसा भाग्य प्राप्त होता है, ताकि वो भगवान को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है। तो नारद मुनि का जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है। तो ये तीनों जगत में ऐसे महात्माओं का संग बहुत ही दुर्लभ है, जैसे हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि तो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे कई सारे जीवात्माएं हैं जिनको अभी तक मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ है, तो वहां पर केवल आहार निद्र भय मैथुना यही कार्य होता है। केवल मनुष्य जन्म में एक विशेषता प्रदान किया गया है, उसमें हम अपने आप को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, जीवन का लक्ष्य समझ सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो केवल एकमात्र कारण के लिए प्राप्त हुआ है, वो है भगवान का भक्ति करने के लिए। तो लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि ये जो असार भूत संसारे सारम एतद् आत्मजा, ये है बृहन्नारदीय पुराण में नारद मुनि बताते हैं कि असार भूत संसार में सारम एतद् आत्मजा भगवत भक्त संगश्च हरि भक्ति तितिक्षव। ये तीन चीज है इस भौतिक जगत में हमको सार रूप में प्राप्त होता है। एक है भगवत भक्त संग, हरि भक्ति और तितिक्षव, भगवान का भक्तों का संग, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की, गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की। तो संसार नाम के विषय वृक्ष में दो प्रकार के फल है, तीन चीज यही है कि भगवत भक्तों का संग और दूसरा हरि भक्ति और तीसरा वो तितिक्षव बताया। इस भौतिक जगत में केवल तितिक्षव मतलब टॉलरेंस करना है, भौतिक जगत में केवल टॉलरेंस करना है और कुछ नहीं है। और हरि भक्ति और भक्तों का संग, तो गरुड़ पुराण में भी यही बताते हैं कि संसार नाम के विषय वृक्ष में दो फल होता है, ये वृक्ष विष का है, जहर का है, लेकिन दो अमृतमय फल है, वो है कदाचित केशव भक्ति तदा तद भक्तेर वा समागमा, भक्तों का केशव भक्ति और उन केशव का भक्तों का समागम, ये दो ही चीज है अमृत जैसे फल है। तो ये वैष्णव हमेशा भगवान का भक्ति में लगे रहते हैं, पर दुख दुखी मतलब वैष्णव हमेशा पर दुख दुखी रहते हैं। तो यहां पर नारद मुनि भी प्रचेताओं को अपना संग प्रदान करने के लिए आते हैं। तो नारद मुनि को कोई इन्विटेशन करने की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि इन्विटेशन देख के वो जाते हैं, तो क्योंकि परदुख दुखी दूसरों का दुखों को वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे पहुंच जाते हैं जहां पर भगवान की भक्ति करने के लिए थोड़ा भी इच्छा है, वो नारद मुनि पहुंच जाते हैं। नहीं तो नारद मुनि का जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो शुद्ध भक्त है उनका भी वही मिशन है, वो भी पहुंच जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं, परदुखेन आत्म दुखम मन्यते नृपोत्तम भगवत धर्म निरतास ते नरः वैष्णवा नृपा। तो ये वैष्णव भगवान का भक्ति का प्रचार में लगे रहते हैं, क्योंकि ये भगवान का मिशन है। शुद्ध भक्त वैष्णव है, भगवान का मिशन को ही अपना मिशन बनाते हैं, तो इसलिए तो हमेशा भगवान का प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो जब भगवान का सेवा करते हैं तो हमारा जन्म, हमारा कर्म, हमारा आयु, मन और वाणी सब शुद्ध हो जाता है। तो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, काला गोरा कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको केवल भगवान का भक्ति करना चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज के तारीख में लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे इतना पागल है, तो उनको लगता है कि केवल धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं है कि धन कमाने से व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता है। उनको असली सुखी बनना है तो उनको भगवान का सेवा ही करना है, दूसरा कोई भी तरीके से व्यक्ति सुखी नहीं बन सकते। तो जैसे नारद मुनि ने पिछले श्लोकों में भी बताया कि तीन प्रकार का जन्म के बारे में बताते हैं। एक है शुक्र जन्म, सवित्र जन्म और यज्ञ के जन्म। शुक्र जन्म तो जानवर को भी प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य जन्म में व्यक्ति शुक्र जन्म से ऊपर आ सकता है। एक वैष्णव गुरु के संग में जाके उनसे जब दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको सवित्र जन्म प्राप्त होता है, और सवित्र जन्म प्राप्त करके तो भक्ति में आगे जब बढ़ जाते हैं, भगवान का पूजा सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ब्राह्मण दीक्षा होके उसको यज्ञ के जन्म प्राप्त होता है। तो लेकिन नारद मुनि बताते हैं कि तीनों जन्म प्राप्त करके देवताओं के ब्रह्मा का आयु भी प्राप्त क्यों न करें, अगर वो भगवान का भक्ति या सेवा में नहीं लगता है तो ये पूरा वेस्ट हो जाता है। तो आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, जैसे कि बताया गया है कि जन्मना जायते शूद्र कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सभी के सभी शूद्र है। तो हर एक व्यक्ति शूद्र है, लेकिन व्यक्ति को एक वैष्णव बना सकते हैं। ये भगवान का भक्ति को प्रदान करके व्यक्ति कितना भी नीचे स्तर पर क्यों ना गया हो, अगर उसके पास थोड़ा सा भी टेंडेंसी है भगवान का भक्ति करने की, तो उसको एक शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो उनको आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं कि यथा कांचनताम याति कामस्याम रसविदानथा। तो बेल मेटल होता है, बेल मेटल को मर्क्यूरी के साथ मिला के कुछ रसविधान से गोल्ड बना सकते हैं। तो उसी प्रकार अलग की व्यक्ति शुद्ध भी नहीं हो तथा दीक्षा विधाने न द्विजत्तम जायते न रहा। तो एक व्यक्ति को वैष्णव परिवार में लाके वहां पर उनको दीक्षा प्रदान करके भक्ति का जो विधि विधान को सिखा के उनको भी शुद्ध गोल्ड, प्योर गोल्ड जैसे वैष्णव बना सकते हैं। तो शास्त्रों में भी यही बताया गया है, चांडालो अपि द्विज श्रेष्ठो हरि भक्ति परायण। तो व्यक्ति चांडाल भी क्यों ना हो, चांडालो अपि द्विज श्रेष्ठ, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन सकता है जब वो हरि भक्ति परायण बन जाता है, भगवान का कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि हरिभक्ति विहीनश्च द्विजोपि स्वपचो अधमः। तो अगर वो हरिभक्ति नहीं करता है, हालांकि वो ब्राह्मण द्विज क्यों न हो, फिर भी अगर हरिभक्ति परायण नहीं है तो वो स्वपचो अपि अधमः। स्वपचो मतलब क्या है, जो कुत्ताओं को खाने वाला, तो कुत्तों को खाने वाला आप समझ सकते हैं कि कुत्ता खाने वाला कितना अधम हो सकता है। तो कुत्ता मतलब वर्स्ट एनिमल है। तो कल मैं बालाजी मंदिर में वहां पर जप कर रहा था, तो चार पांच कुत्ता एक साथ आ गए और एक सुअर को फाड़ के उधर ही खा लिया। हम सोच सकते हैं सुअर क्या खाता है, तो जो विष्ठा खाता है, और विष्ठा खाने वाला सुअर को खाने वाला दूसरा कुत्ता है, तो उससे भी अधम बताया गया है अगर वह व्यक्ति हरि भक्ति परायण नहीं है। तो श्री प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि विप्रा द्विषड गुणा आयुता अरविंद नाभा पदारविंद विमुखाद स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने प्राणम पुनाति सकलम न तु भूरिमानः। तो व्यक्ति अगर भगवान का भक्ति नहीं करता है, भगवान से विमुख होता है, तो वो उनकी भी वही हालत है। तो जो व्यक्ति चांडाल भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का भक्ति करता है, हरिभक्ति परायण बन जाता है, तो सारे कुल का उद्धार कर सकता है। अगर वो भगवान का भक्ति करता है तो, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है, गर्वित है, अहंकारी है, वो सारे कुल को उद्धार करने का बात तो दूर है, अपने आप को भी उद्धार नहीं कर सकता है। तो आजकल के तारीख में कई सारे तो इंटेलिजेंट लोग हैं, शार्पली इंटेलिजेंट पीपल, तो बुद्धि का कोई कमी है क्या? बुद्धि का कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे लोग अपना बुद्धि को भगवान को समझने के बदले, भगवान का हरि भक्ति परायण बनने के बदले में कई सारे साइंटिफिक एनालिसिस करके कई सारे मशीन्स को तैयार करने में लगाते हैं। हम सोच सकते हैं कि मोबाइल फोन है, उसमें कितना बड़ा इंटेलिजेंस लगाया है, कितना महीना लगाया होगा ना, कितना है उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च वगैरह किया होगा, हर बार नया अपडेट्स आते रहता है, इसके मतलब नया साइंटिफिक एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन कितना भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वो करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, इन साइंटिस्ट लोग जो मशीन्स क्रिएट करते हैं उसको ही भगवान का सेवा में लगाते हैं एक्सपर्टली। हम देखते हैं मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में अभी भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, शील प्रभुपाद के लेक्चर, पूरा सब कुछ उधर ही अवेलेबल है, तो उसको ही भगवान का सेवा में लगा के अपना जीवन को धन्य करते हैं। तो लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल रिसाइटर्स है, जो व्यक्ति रामायण, भगवद गीता, भागवतम, वैदिक लिटरेचर, तो पढ़ता है कि, लेकिन प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो है उनके पास अच्छे गुण होता है, और कितना भी अच्छा गुण क्यों ना हो, वर्ड जगलरी के द्वारा लोगों को इंप्रेस करने का प्रयास भी करते हैं, फिर भी वो असली में कृष्ण भक्ति को वो प्रदान नहीं कर सकते। तो कृष्ण भक्ति केवल एक शुद्ध भक्ति ही प्रदान कर सकता है। तो मेटेरियल इंटेलेक्चुअल का काम नहीं है, एक शुद्ध भक्त का काम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देर आर मेनी मेनी क्रिएटिव फिलोसोफर्स, थॉटफुल राइटर्स, दे आर सिंपली यूजलेस मेंटल स्पेकुलेटर्स। क्रिएटिव फिलोसोफर्स, थॉटफुल राइटर्स, दे आर सिंपली यूजलेस मेंटल स्पेकुलेटर्स। तो ऐसे नारद मुनि आगे कहते हैं कि मिस्टिक योगा, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर, सीवियर ऑस्टरिटी, एक्सेप्टेंस ऑफ संन्यास, स्टडी ऑफ वेदा, दे आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, बट अनलेस दे अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दे आर ऑल्सो यूजलेस। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि वहां पर विदाउट टच ऑफ डिवोशनल सर्विस, ज्ञान योग, सांख्य योग कैनॉट गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ज्ञान योग, सांख्य योग जब तक भक्ति नहीं करते हैं, ये ज्ञान योग और सांख्य योग भी अपना असली फल प्रदान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए नारद मुनि बताते हैं कि 14वीं श्लोक में बताते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युत्तेज्य। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्टि होती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तो फिर यहां पर बहुत ही सिस्टमैटिकली समझाया नारद मुनि का जो इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही दिव्य है। तो आज का श्लोक में भी बताते हैं कि यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावयव गुणप्रवाह। तो हम देखते हैं नारद मुनि का जो एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। तो ये नारद मुनि ने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रचेताओं को, तो हजारों साल पहले नारद मुनि ने प्रचेताओं को ये उपदेश दिया होगा, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम भी वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान आया है एक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो यहां पर नारद मुनि बताते हैं कि वर्षा काल में सूर्य से जल वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है, और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। ये सिंपल एग्जाम्पल है, कोई भी समझ सकते हैं। बारिश में पानी आ जाता है, फिर इवापोरेट हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर से वापस आ जाता है। और दूसरा उदाहरण है, चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो बड़ा होता है किससे? तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न को खा के हमारा शरीर बढ़ता है, फिर से कुछ काल के बाद हमारा शरीर वही पंचभूत से बना हुआ शरीर है पंचभूत में मिल जाता है। तो जैसे सूर्य से बारिश आ जाता है, वर्षा काल में बारिश आ जाता है और ग्रीष्म काल में उसको इवापोरेट करता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। तो ये भगवान के शक्ति के द्वारा होता है। तो श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम का 9.4 का, मत्सानि सर्वभूतानि, यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य का जो हीट होता है, तो सूर्य का हीट से सारे प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व हो जाता है और अपने ऑर्बिट में वो घूमते रहते हैं। तो ये सूर्य शक्ति के द्वारा उस जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट सूर्य का किरणों के ऊपर वो स्थित रहता है। तो कभी कभी हम देख सकते हैं ये सनशेन है, सनशेन के ऊपर वो प्लैनेट स्थित रहता है, वो वहां पर जो सारे प्लांट्स ग्रो हो जाता है और वहां पर कलर फूलों का फल का कलर भी बदलते रहता है। ये जो सन का रे है, सूर्य का किरण है, और वो सूर्य से अभिन्न है, तो ये जो सूर्य के किरणों के ऊपर कई सारे प्लैनेट रहता है और वो प्लैनेट भी सूर्य से अभिन्न है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ही ये सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो ये जो महाविष्णु के द्वारा होता है, भगवान के एक्सपांशन के कई सारे ये है। तो वहां पर भगवान सृष्टि करते हैं और जस ये जो सृष्टि है उन्हीं में समेट जाता है। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अचिंत भेद अभेद तत्व है। जो सनशाइन जो है, हम देखते हैं सूर्य में, सूर्य भगवान एक व्यक्ति है और सूर्य लोक है और सूर्य किरण है। तो सूर्य किरण में भी लाइट है, सूर्य ग्रह में भी लाइट है और सूर्य में भी लाइट है। लेकिन ये जो सूर्य किरण, सूर्य नहीं कहा जा सकता है। तो उसी प्रकार ये जो सारे सृष्टि है भगवान से ही उद्भूत होते हैं, फिर भी भगवान से भिन्न है और भिन्न भी है और अभिन्न भी है, क्योंकि भगवान से ही निकलते हैं और सूर्य किरण है वो सूर्य से ही निकलता है, लेकिन सूर्य किरण को सूर्य नहीं बोला सकते। तो प्रभुपाद जी उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे कोई घर का मालिक है, घर में कई सारे कमरा हो सकता है, तो फिजिकली व्यक्ति हर कमरे में मौजूद नहीं हो सकता है, फिर भी वो सारे कमरा उनका ही है। जैसे राजा है, राजा अपना पैलेस के एक कमरे के अंदर रह रहा है, हर एक कमरे में नहीं रह रहा है, फिर भी वो राजा का पैलेस है, वो उन्हीं का माना जा सकता है। तो भगवान इस भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान कभी प्रकट होते हैं, है ना। तो ये भगवान यहां पर बताते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान ऐसा नहीं कि एक शक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। उनके शरीर से ये जो किरण निकलते हैं इसको ब्रह्म ज्योति कहला जाता है। और एक प्रकार से देखेंगे तो ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान ही है, भगवान से ही ब्रह्म ज्योति निकलता है। तो भगवान को समझना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो ये भगवान का शरीर से ही ब्रह्म ज्योति निकलता है और सारे जगत है भगवान के ये ब्रह्म ज्योति के ऊपर रहते हैं। तो ये प्रकृति भी भगवान से निकलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मेटेरियल नेचर है तो प्रकृति भगवान से निकलती है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को ही सर्वोपरि समझ जाते हैं तो ये अधूरा ज्ञान है। ये प्रकृति जो है वो इमीडिएट कॉज है और भगवान है वो रिमोट कॉज है। तो अगर कोई प्रकृति को समझते हैं कि सर्वोपरि है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रकृति और मेटेरियल नेचर टू बी द कॉज ऑफ एवरीथिंग इज लाइक अंडरस्टैंडिंग द निपल्स ऑन द नेक ऑफ अ गोट टू बी कॉजिंग मिल्क। श्रील प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं। तो ये मटका जो बनता है मिट्टी से, तो ये जो मटका मिट्टी से बनता है, अगर मिट्टी है वो इमीडिएट कॉज है, लेकिन जो मिट्टी से मटका बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो ओरिजिनल कॉज है। तो वो जो कुंभार है वो मटका बनाता है, वो मिट्टी को सप्लाई करता है और जो व्हील है मटका बनाने वाला उसको घुमाने वाला वो है ओरिजिनल कॉज है। उसी प्रकार जो प्रकृति जो है वो इमीडिएट कॉज है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान अल्टीमेट ओरिजिनल कॉज है, क्योंकि भगवान ही सारे कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सारे वेद शास्त्र में यही कहा जाता है, भगवान ही सारे कारणों का कारण है। तो ये सृष्टि का तीन कारण है, एक है काल है और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है, तीसरा क्रिएटर है। और भगवान के अंदर ये तीनों कारण हम देख सकते हैं। तो इसलिए यह बताया जाता है कि ये जो अल्टीमेट कॉज है भगवान का ही शेल्टर लेना चाहिए और उनका ही भक्ति करने के लिए बताया गया है। इसलिए बताते हैं कि यथा तरोर मूल निशेचनेना। तो पूरा श्रद्धा के साथ व्यक्ति ये समझ जाता है। ये बहुत नारद मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से आगे का श्लोकों में भी समझाते हैं। जो व्यक्ति भगवान को समझ जाता है तो भगवान का प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो भगवान को समझना बहुत आसान है, तो बहुत सुलभ से समझ सकते हैं। तो नारद मुनि एक सरल सूत्र बताते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का सूत्र है। वो सूत्र क्या है? तीन चीज बताते हैं। एक है दया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टा येन केन वा, और तीसरा सर्वेंद्रिय उपशांत्याचा। तुष्यति आशु जनार्दना, तुष्यति आशु जनार्दन मतलब भगवान को जल्दी से प्रसन्न कर सकता है कौन? पहला चीज बताया गया है दया सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति दया दिखाना है। ये सबसे पहला सूत्र बताते हैं। तो जीवात्माओं को दया कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए जीव दया में जाना पड़ेगा। तो दया सर्वभूतेषु, तो श्रील प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ वितरण करके हम भगवान के ज्ञान को जीवात्माओं के प्रति पहुंचा सकते हैं। तो दया सर्वभूतेषु, अरे भगवान का कीर्तन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से कीर्तन करके जो जीवात्मा अभी तक भगवान का भक्ति को समझ भी नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ है, पौधा है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु पक्षी है, उन तक भी ये दया दिखा सकते हैं। तो दया कौन दिखाना चाहिए? जो असली में पढ़े लिखे है वो दया दिखाना, मतलब ये गीता भागवत का प्रचार करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति किया है उसका आद्य कर्तव्य है कि ये भगवान का भक्ति का प्रचार करे, सारे जगत में प्रचार करना जरूरी है। तो हर जीव इस भौतिक जगत में सफरिंग कर रहा है क्योंकि भगवान का भक्ति का ज्ञान उनके तक पहुंचा नहीं है, इसलिए ये प्रचार करके, भगवान का नाम संकीर्तन करके हम सभी जीवात्माओं को दया दिखा सकते हैं। तो भगवान का कीर्तन ऐसा जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति के पास ही जाके पहुंच के कीर्तन करना है। राधा वृंदावन चंद्र, मंदिर के अंदर भी हम कीर्तन करके, अपने घर में भी रह के भी हम कीर्तन करेंगे तो सभी जीवात्माओं तक पहुंच सकता है। जैसे हम देख सकते हैं मोबाइल फोन है, इंडिया में रहकर हम अमेरिका में फोन कर सकते हैं। अगर ये भौतिक एक मशीन इतना कार्य कर सकता है तो आध्यात्मिक जो नाम है, भगवान का नाम है, हम एक जगह में जप करके, कीर्तन करके हर जीवात्माओं के प्रति क्यों न पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, संतुष्टा ये न के न वा, तो व्यक्ति संतुष्ट रहना जरूरी है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो दूसरा सूत्र, संतुष्ट ये न के न वा, तो भगवान के जो भक्त होते हैं तो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो कभी कोई भी चीज उसको उनको संतुष्टि से दूर नहीं कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नारायण परासर्वे न कुतस्य न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। तो कैसे इसको अटेन कर सकते हैं? सर्वे इंद्रिय उपशांत्या, मतलब सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके, इंद्रिय निग्रह कैसे कर सकते हैं? तो मन को भगवान का चरण में लगा के, जैसे अम्बरीश महाराज का प्रार्थना में हम सुनते हैं, सवई मना कृष्ण पदारविंद यो, मन को पहले अम्बरीश महाराज ने भगवान का चरण में लगा दिया पावरफुल सेंस है। तो लीडर ऑफ ऑल सेंसेस जो मन है उनको ही भगवान का चरण में लगा दिया, तो बाकी जब फॉलोअर्स अपने आप उसमें लग गए। तो ऐसे मन को भगवान के चरण में लगा दिए तो सारी इंद्रिया शांत हो जाता है। तो ऐसा जो भक्त है शुद्ध हो चुका है, अपने चित्त को शुद्ध किया है, मन को शुद्ध किया है, वो व्यक्ति भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं अपने हृदय से, भावनाओं के साथ